हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रात को जब वेद शिवांशा को सब बताने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गया था, तब रास्ते में लौटते समय वो थकान के कारण सो चुकी थी। शिवांशा कंफर्टेबल होकर सो सके, ये सोचकर वेद ने उसे बेड पर लिटा दिया था और खुद काउच पर सोया हुआ था। अगली सुबह बेड साइड पर रखा अलार्म बजने पर शिवांशा की नींद टूटी और उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया था। उठने पर उसने देखा कि वो बेड पर सोई हुई थी। शिवांशा की नज़र तुरंत बेड की दूसरी तरफ गई, लेकिन वो जगह खाली थी। शिवांशा ने उठकर देखा तो वेद काउच पर काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सो रहा था। नींद में भी वो बार बार करवट बदल रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। क्या जरूरत थी इतनी दरियादिली दिखाने की, जब पता है कि आपको काउच पर नींद नहीं आएगी, शिवांशा ने सर पकड़कर कहा और फिर वेद का कंधा पकड़कर उसे जगाने लगी। उठिए, उठ जाइए वेद, अभी ज्यादा लेट नहीं हुई है, तो आप आराम से थोड़ी देर सो जाइए। शिवांशा के अचानक उसका कंधा पकड़ने पर वेद नींद में भी थोड़ा चौंक गया। शिवांशा ने जल्दी से अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया था। वेद ने अपनी आंखें खोलीं तो सामने शिवांशा खड़ी हुई थी। वो आपको डराने का मेरा इरादा नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि आप आराम से बेड पर सो जाइए, अभी थोड़ा टाइम है, शिवांशा ने हड़बड़ाते हुए कहा। वेद ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया था। उसने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने शिवांशा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं इसी टाइम उठता हूं, अगर थोड़ा सा भी और देर हुआ तो मेरा शेड्यूल खराब हो जाएगा और ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आप रात को ठीक से सो नहीं पाए थे, आप मुझे काउच पर लेटा देते, मुझे तो आदत है, शिवांशा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, तुम चाहो तो थोड़ी देर और आराम कर सकती हो, मुझे 1 घंटा जिम में लगेगा, वेद ने जवाब दिया और उठकर सीधा जिम एरिया में जाने लगा। शिवांशा सोने के बजाय उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसने देखा कि वेद जाते ही जिम एरिया के बाथरूम में चला गया था और लगभग 10 मिनट बाद बाहर आया था। उसका ध्यान शिवांशा पर नहीं था, इसलिए उसने सीधा अपना शर्ट निकालकर साइड में रख दिया था। शिवांशा खोई हुई निगाहों से उसकी शर्टलेस बॉडी को देख रही थी, जो काफी मेहनत करके बनाई हुई थी। वेद ने जैसे ही वार्म अप करने के लिए ट्रेडमिल पर पैर रखा, उसकी नजर शिवांशा की तरफ गई। वेद ने शिवांशा की तरफ घूर कर देखा और कहा, और तुम कब से हो यहां पर, बोलते हुए उसने अपना शर्ट लिया और वापस पहनने लगा था। तब से जब आप यहां पर आए हो, शिवांशा ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसने वेद के हाथों को पकड़ लिया था, जो जल्दी जल्दी शर्ट के बटन बंद कर रहे थे। वेद ने आइज रोल की और उसे डांटते हुए एक हल्का सख्त लहजे में बोला, शर्म तो बिल्कुल नहीं आती ना तुम्हें, अपने पति को ऐसे देखने में कैसी शर्म, शिवांशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जितनी हिम्मत तुम मेरे सामने खुलने में और बाकी चीजों में लगा रही हो, उतनी ही हिम्मत और जगह दिखाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, वेद ने जवाब दिया। उसकी नजरें भी शिवांशा के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिसने अभी भी उसके शर्ट को पकड़ रखा था। हाँ, धीरे धीरे सीख रही हूं, लेकिन शुरुआत आपसे ही तो कर रही हूं ना, आप चाहो तो आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, शिवांशा ने पलकें झपकाकर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा जी, और मेरा क्या, और तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह मुझे घूर कर देखोगी और मैं आराम से एक्सरसाइज करूंगा, चुपचाप जाकर रूम क्लीन करो और जाकर मेरे लिए कपड़े निकालो, चलो निकलो यहां से, वेद ने जवाब दिया और फिर शिवांशा के हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घुमा दिया था। वेद ने शिवांशा की दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे जिम रूम से बाहर निकाल दिया था और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। शिवांशा उसकी तरफ मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ से देख रही थी। उसकी ये क्यूट सी हरकतें देखकर वेद के फेस पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। वेद ने बाय बोलते हुए हवा में हाथ हिलाया और पर्दे बंद कर दिए थे। शिवांशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और पैर पटकते हुए कहा, बहुत ही बुरे हो आप। शिवांशा कमरे के अंदर आ गई थी और वेद के कहे मुताबिक रूम का सामान सेट करने लग गई। सब कुछ करने के बाद वो नहाकर वापस आई और आज फिर उसने सूट ही पहना था। वैसे भी वेद की तरफ से उसे किसी चीज की मनाही नहीं थी। नहाने के बाद शिवांशा थोड़ी बहुत तैयार हुई और वेद के कपड़े निकालने के लिए उसने जैसे ही अलमारी खोली, एक पैकेट बाहर आकर गिर गया था। ऐसे तो शिवांशा उसकी अलमारी में किसी भी सामान की ताका झाकी नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही पैकेट नीचे गिरा, एक साड़ी उसमें से बाहर निकल कर गिर पड़ी थी। वो वही साड़ी थी जो कल रात वेद शिवांशा के लिए लेकर आया था। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उनके कबर्ड में साड़ी क्या कर रही है, शिवांशा हैरानी से बोली। इस बीच वेद भी अंदर आ गया था और उसने शिवांशा को साड़ी के साथ देख लिया था। वेद ने उसकी तरफ आते हुए जवाब में कहा, कल आराध्या के साथ एक हैंडलूम वर्कशॉप गया था और मुझे वहां ये अच्छी लगी थी तो तुम्हारे लिए ले आया था। मुझे अच्छी लगी, मैं लेकर आया। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारे साथ किसी तरह की जबरदस्ती है कि तुम इसे पहनो, रख दो, कभी मन हो या बाहर जाना हो तो देख लेना, बोलते हुए उसका ध्यान शिवांशा की तरफ गया, जिसने आज भी येलो व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। शिवांशा ने गहरी सांस ली और वेद को छेड़ते हुए कहा, आपको क्या सीधे सीधे कहने में शर्माती है कि आपको मुझे साड़ी में देखना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारे कंफर्ट के साथ भी तो समझौता नहीं कर सकता ना, वेद ने गवाहें उठाकर कहा।
थोड़ी देर पहले भी तो आपने मेरे कंफर्ट के साथ समझौता किया ना, जब मुझे उस कमरे से बाहर निकाल दिया था। मैं कितने आराम से अपने पति को जिम करते हुए देख रही थी। मुझे देखना था कि आखिर वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सब खराब कर दिया। आप सब कुछ खुद से ही सोच लेते हो, शिवांशा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। वेद ने उसकी इस हरकत पर उसकी नाक को हल्के से पकड़कर खींचा और कहा, बहुत समझदार बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा ना, मुझे अच्छी लगी तो बस ले आया। इसे अपने कपड़ों में रख लेना और मुझे अपने कपड़े निकालने दो। एक छोटा सा काम बोला था, वो भी नहीं किया। वेद ने शिवांशा को साइड किया और खुद ही अपने लिए कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया था। उसके जाते ही शिवांशा जल्दी से अपनी अलमारी के पास गई और उससे मैच करता हुआ ब्लाउज और बाकी जरूरी चीजें निकाली। वेद बाथरूम में था तो उसे बाहर चेंज करने में किसी तरह की झिझक नहीं थी। शिवांशा ने कमरा बंद किया और जल्द ही चेंज कर लिया था। जब वेद बाथरूम से बाहर निकला तो शिवांशा साड़ी में उलझी हुई थी और उसे पहनने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर वेद ने तंज भरे लहजे में गहरी सांस लेकर छोड़ी। वो उसके कदमों में बैठते हुए बोला, कर ली अपनी जिद पूरी, रुको मुझे हेल्प करने दो। वेद को इस तरह अपने पैरों में बैठा देखकर शिवांशा को काफी अजीब लग रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की तो वेद उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। शिवांशा के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वेद को इस तरह अपने पैरों में बैठा देखकर उसे कितना अजीब लग रहा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं भी बस अपनी पत्नी की हेल्प कर रहा हूँ, वेद ने आइज रोल करके जवाब दिया और अपने मोबाइल में एक वीडियो निकाल लिया था। वेद की हेल्प से आज शिवांशा ने पहली बार परफेक्ट तरीके से साड़ी पहनी थी और वो उसमें बहुत अच्छी भी लग रही थी। वेद शिवांशा को आईने के सामने लेकर गया। वो उसके पीछे उसे दोनों हाथों से पकड़कर खड़ा हुआ था। शिवांशा की तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि वेद के इतने करीब होने पर वो आईने में उसके साथ खुद को देख सके।
अब तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और बहादुरी कहाँ गई, एक बार सामने देखो तो सही, वेद ने बिल्कुल धीमी आवाज में शिवांशा के कान में कहा। उसके कहने पर शिवांशा ने जल्दी से नजरें ऊपर की और उन दोनों को साथ में आईने में देखा। उसका बस चलता तो वो उन दोनों की नजर उतार लेती। परफेक्ट जोड़ी, शिवांशा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वेद भी हल्का सा हंस पड़ा था। उसे आईने में देखते हुए अचानक वेद की नजर शिवांशा के गले की तरफ गई, जिसमें अभी भी सिर्फ उस चेन पेंडेंट के अलावा और कुछ नहीं था जो वेद ने दिया था। रात को भी वेद ने शिवांशा के पैरों में पतली सी पायल देखी थी। शिवांशा ने आईने में देखा कि वेद के चेहरे के भाव गंभीर पड़ रहे हैं। वो उसकी तरफ पलटकर बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे एक मिनट दो, वेद ने जवाब दिया और फिर अपनी अलमारी में से जाकर एक चाबी का गुच्छा निकालकर लेकर आया। उसने उसे शिवांशा के हाथों में रखते हुए कहा, जिस कमरे में तुम रहती थी उसके सामने एक पैसेज बना हुआ है, आगे तक जाओगी तब सामने एक कमरा दिखाई देगा, उस कमरे की चाबी इसी में लगी हुई है और उसमें जितनी भी अलमारियां हैं उनकी चाबियां भी इसी में हैं। और उसमें क्या है? शिवांशा ने हैरानी से पूछा। उसमें ज्वेलरी है, तुम्हें अपने हिसाब से जो भी पहनना है या अच्छा लगे तुम ले सकती हो, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही है, और कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, संडे को हम शॉपिंग करने चलेंगे, वेद ने जवाब दिया। लेकिन मेरा असली गहना तो मेरा पति है, पता नहीं वो मुझे कब मिलेगा, शिवांशा ने इधर उधर देखते हुए कहा, जिस पर वेद ने फिर से तंज भरे लहजे में सिर हिला दिया था। मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि तुम मुझे जानबूझकर तंग कर रही हो, थोड़ा वेट करो, वो भी मिल जाएगा, मुझे प्रतीक से बात करने का मौका नहीं मिला, बोलता हूँ उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन का, तब तक थोड़ा सब्र रखो, वेद ने जवाब दिया। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर दोनों साथ में नीचे चले गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अरमान के घर पर अरमान मनन को सब कुछ समझाते हुए पैकिंग कर रहा था। वो रोहन को लेकर उदयपुर जा रहा था। मनन, आई होप कि तुम गुड बॉय बनकर रहोगे, मुझे आने के बाद नव्यांशी से तुम्हारी शिकायत नहीं सुननी है कि तुमने उसे परेशान किया, अरमान बोला। वहीं मनन का मुंह बना हुआ था, जब से उसे पता चला कि अरमान रोहन को लेकर उदयपुर जा रहा है, वो भी उसे यहां छोड़कर, तो वो अरमान से गुस्सा था। बहुत बुरी बात है अरमान तुम्हारी, तुम दोनों अकेले अकेले ही शिवी से मिलने जा रहे हो, वो मेरे बारे में पूछेगी तो मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल दोगे कि मैं ही नहीं आना चाहता था, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मनन ने मुंह बनाकर कहा और फिर अरमान के पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया था। अरमान का चेहरा दूसरी तरफ था, अगर मामला रोहन के केस का नहीं होता तो वो कभी मनन को अकेले किसी के भरोसे छोड़कर नहीं जाता। अरमान तुरंत मनन की तरफ पलटा और उसे सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें 2-3 दिनों बाद ले जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे सिर्फ शिवांशा से ही नहीं मिलना, साथ में मिस्टर चौहान भी होंगे, तुम जानते हो ना वो कितना गुस्सा करते हैं और सबको डांटते रहते हैं, इस बार रोहन की मेडिसिन के लिए जा रहे हैं, अगली बार घूमने जाएंगे तब पक्का तुम्हें लेकर चलूंगा। हाँ, मिस्टर चौहान बहुत बुरे हैं, दूसरों की दुल्हन चुराने वाले, मनन ने जल्दी से कहा। नव्यांशी भी वहीं खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने उन दोनों के मुंह से वेद की बुराई सुनी तो वो चिढ़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, तुम दोनों मेरे भाई की बुराई करना बंद करोगे, वो भी मेरे ही सामने, लोगों में कर्टसी नाम की चीज नहीं है। अरमान ने नव्यांशी की तरफ देखकर सिर हिलाया, मानो आंखों ही आंखों में उसे समझाना चाहता हो कि फिलहाल अपना मुंह बंद रखे। नव्यांशी ने भी बिना कुछ कहे आंखें घुमाते हुए हां में सिर हिला दिया था। पूरी पैकिंग हो जाने के बाद अरमान ने मनन को बाहर भेज दिया था। वो नव्यांशी के साथ अकेला था। उसने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा,
थैंक यू सो मच नव्यांशी, आई डोंट नो तुम नहीं होती तो मैं ये सिचुएशन कैसे हैंडल करता। सच कहूँ तो मनन के साथ साथ मुझे भी तुम्हारी आदत लगने लगी है, जो कि मैं जानता हूँ कि सही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ये स्पीच देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे कहो ना कि जब तुम आओ तब सारा काम हो जाना चाहिए, नव्यांशी ने उसे टालते हुए कहा, जबकि वो अच्छे से समझती थी कि अरमान की बातों का क्या मतलब निकल रहा था। अरमान के साथ रहते हुए उसे भी उसे तंग करने और उसके आसपास रहने की आदत सी हो गई थी। अब तुम इतनी समझदार जो हो कि मुझे बात को घुमा फिरा कर कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे पीछे से घर गंदा मत करना, अगर करो भी तो आई होप कि तुम साफ कर दोगी, अरमान ने मुस्कुराकर कंधे उठाकर कहा और फिर सामान के साथ बाहर आ गया था। हालांकि नव्यांशी भी इस बात से अनजान थी कि आखिर अरमान रोहन को लेकर उदयपुर क्यों जा रहा था। अगर वो सच में उसे शिवांशा से मिलवाने जा रहा था तो ऐसे में मनन को ना ले जाने का क्या कारण था। जैसे ही अरमान और रोहन वहां से निकले, नव्यांशी ने मनन से कहा, अच्छा मनन तुम ऐसा करो, लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखो, तब तक मैं अरमान का वर्किंग स्पेस साफ कर देती हूँ, वैसे भी घर की क्लीनिंग मुझे ही करनी है। ठीक है, मनन ने जवाब दिया और टीवी के सामने जाकर बैठ गया था। वहीं नव्यांशी जल्दी से अरमान के वर्किंग स्पेस में आ गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि उस कमरे से उसे काफी सारी चीजों के बारे में पता चल सकता था। सफाई के बहाने नव्यांशी वहां मौजूद हर एक डॉक्यूमेंट को गौर से देख रही थी, जिसमें रोहन की रिपोर्ट तक रखी हुई थी। हाँ, ये बात अलग थी कि अब तक वो नव्यांशी के हाथ नहीं लगी थी, पर जिस तरह से वो उन्हें ढूंढने में लगी थी, ये तो तय था कि अब नहीं तो थोड़ी देर में नव्यांशी को रोहन की मेडिकल कंडीशन के बारे में पता लग ही जाना था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। ये हर कहानी सीरियल मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर होता ही है जिन्हें जासूसी करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। हमारी नव्यांशी भी ऐसी ही है। सोचो उसे सच पता चल गया तो आगे क्या होगा और अरमान उसे कैसे हैंडल करेगा। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। वैसे आपको शिवी और वेद का पार्ट कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।